نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ یہ مضمون نیکی کی دعوت کے صفحہ 497-510 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ نیکی کی دعوت کیسے دیں پڑھ یا سن لے، اس کو نرم مزاج اور میٹھے بول بولنے والا بنا، اور اسے والدین سمیت بے حساب بخش دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیکی کی دعوت کا تارک حضور علیہ السلام کے طریقے پر نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر، یعنی وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے، اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے۔ نیکی کی دعوت صرف علماء پر نہیں، عوام پر بھی لازم ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے الفاظ نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے کے تحت فرماتے ہیں، ہر شخص اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق دینی احکام لوگوں میں جاری کرے، یہ صرف علماء کا ہی فرض نہیں، سب پر لازم ہے۔ حاکم ہاتھ سے برائیاں روکے، عالم عام زبانی تبلیغ سے یہ فرض انجام دے، فی زمانہ اس سے بہت غفلت ہے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، تو کر ایسا جذبہ عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عربی نے جب مسجد میں پیشاب کر دیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں موجود تھے کہ ایک عربی یعنی دیہاتی آیا اور مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم نے اسے پکارا، ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ روکو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر نرمی و شفقت سے فرمایا، یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، یہ تو صرف اللہ پاک کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو پانی لانے کا حکم دیا، وہ پانی کا ڈول لایا اور اس یعنی پیشاب کی جگہ پر بہا دیا۔ نیکی کی دعوت میں نرمی ضروری ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ نجس یعنی ناپاک زمین اگرچہ سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے جبکہ اس سے نجاست کے اثرات زائل ہو جائیں، لیکن زمین کا دھونا بہت ہی بہتر ہے کہ اس سے گندگی کا رنگ و بو بھی جلدی جاتا رہتا ہے اور اس سے تیمم بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں پانی کا ڈول بہانے کے تذکرے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ناپاک زمین بغیر دھوئے پاک نہیں ہو سکتی، نیز مسجد میں پاکی کے علاوہ صفائی بھی چاہیے اور یہ دھلنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے کہ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے होनी चाहिए। पेशाब करते करते अचानक रुक जाने के तिब्बी नुकसानात। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब कोई पेशाब कर रहा हो उसको चौंका देने वाली आवाज लगाने और डराने से बचना चाहिए, क्योंकि पेशाब करते करते किसी खौफ वगैरह के सबब अधूरा पेशाब फौरन रोक देने से तिब्बी तौर पर इतने सख्त नुकसानात पहुंच सकते हैं जितने सांप के डसने से भी नहीं हो सकते। पेशाब अधूरा छोड़ देने की वजह से जुनून यानी पागलपन और बेहोशी के दौरे पड़ने और गुर्दों की मोहलिक बीमारियां हो सकती हैं। खड़े खड़े पेशाब करना सुन्नत नहीं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, बयान करदा रिवायत में खड़े खड़े पेशाब करने का तस्किरा है। इस ज़मन में अर्ज है कि खड़े खड़े पेशाब करना सुन्नत नहीं है। चुनांचे दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब बाहरे शरीयत जिल्द अव्वल 1250 सफाद सफा 407 पर है। तमाम मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जो शख्स तुमसे ये कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो तुम उसे सच्चा ना जानो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पेशाब फरमाते मगर बैठकर। खड़े खड़े पेशाब करने के नुकसानात। अफसोस, आजकल खड़े खड़े पेशाब करने का आम रवाज हो चुका है, बिलखुसूस मतार यानी एयरपोर्ट और दीगर खास खास मकामात पर खड़े होकर पेशाब करने का मखसूस इंतजाम होता है। इस तरह पेशाब करने से जहां सुन्नत फौत होती है वहां इसके तिब्बी नुकसानात भी हैं। चुनाचे तिब्बी तहकीक के मुताबिक खड़े खड़े पेशाब करने से मसाने का गुदूद मुतवर्रिम होकर यानी सूज कर बढ़ जाता है, जिसके बाइस पेशाब तकलीफ से आने, धार पतली होने, कतरा कतरा आने बल्कि पेशाब बंद हो जाने के अमराज पैदा हो सकते हैं। खड़े खड़े पेशाब करने वाले बाज लोग बगैर धोए या बेखुश किए पैंट का बटन या जंजीर बंद कर लेते हैं, जिससे उनकी रानों वगैरह पर पेशाब के छींटे गिरते हैं। इस तरह बिला उज्र बदन को नापाक करने वाले गुनाहगार होने के साथ साथ तिब्बन भी नुकसान में पड़ सकते हैं। एक मुस्तशरिक यानी ऐसा फरंगी यूरोपियन फर्द जो मशरिकी जबानों मसलन उर्दू वगैरह का माहिर हो, डॉक्टर जॉन मिलन कहता है, सुरीनो यानी बदन का वो हिस्सा जो बैठने में जमीन पर लगता है, वो और उसके अतराफ की एलर्जी, रानों की खुजली और फुड़ियों पेड़ों यानी नाफ के नीचे के हिस्से की खाल, उधड़ने की बीमारी, पर्दे की मखसूस जगह के जख्म के मरीज जब मेरे पास आते हैं तो इनमें अक्सर वही होते हैं जो पेशाब के छींटों से नहीं बचते। पेशाब के छींटों से ना बचने का अदाब। हजरत अबी बकरा रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ थामा हुआ था। एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं तरफ था। दरी असना हमने अपने सामने दो कब्रें पाईं तो महबूब खुदाए तवाब नबुवत के आफताब जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों को अदाब हो रहा है और किसी बड़े अमर की वजह से नहीं हो रहा। तुम में से कौन है जो मुझे एक टहनी ला दे? हमने एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं सबकत ले गया और एक टहनी यानी शाख लेकर हाजिर खिदमत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दो टुकड़े कर दिए और दोनों कब्रों पर एक एक रख दिया। फिर इरशाद फरमाया, ये जब तक तर रहेंगी इन पर अजाब में कमी रहेगी और इन दोनों को गीबत और पेशाब की वजह से अजाब हो रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखा आपने गीबतों और पेशाब के छींटों से ना बचना कब्र के अजाब के असबाब में से है। आह, हमारा वो नाजुक बदन जो कि मामूली कांटे की चुभन, दोपहर की धूप की तपिश और जलन और बुखार की मामूली सी अगन बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कब्र का होलनाक अदाब कैसे सह सकेगा? या अल्लाह पाक, ہم پیشاب کی آلودگیوں کے جرموں، غیبتوں، چغلیوں اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ پیارے پیارے مالک، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کردہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، جب ہی تو بعطائے خدائے وہاب قبر کا عذاب ملاحظہ فرما لیا، جیسا کہ بیان کردہ حدیث پاک سے ظاہر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ حدائق بخش شریف میں فرماتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، سر عرش یعنی عرش کے اوپر، ملکوت یعنی فرشتوں کے رہنے کی جگہ، یا یعنی ظاہر۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے، دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شرابی پر انفرادی کوشش کا نتیجہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نرمی سے جو کام ہوتا ہے وہ گرمی سے نہیں ہوا کرتا، اور مبلک کو تو موم سے زیادہ نرم اور برف سے زیادہ ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ جھپٹ کرنے سے کسی کی اصلاح ہونی مشکل ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، حضرت محمد بن زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں حضرت عبداللہ بن محمد بن عائشہ رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نماز مغرب کے بعد مسجد سے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک قریشی نوجوان نشے میں دھت نظر آیا، اس نے ایک عورت کو پکڑ لیا، عورت چلائی، لوگ لپکے اور اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابن عائشہ رحمت اللہ علیہ نے اسے پہچانا اور لوگوں سے چھڑا کر شفقت کے ساتھ سینے سے لگا لیا، اپنے گھر لائے اور اسے سلا دیا۔ جب وہ جاگا تو اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے نشے کے دوران ہونے والے بے حیائی کے قصے اور پٹائی کا معلوم ہوا تو مارے شرم کے رو پڑا اور جانے لگا۔ حضرت ابن عائشہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو روکا اور نہایت نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی اور احساس دلایا کہ بیٹا، آپ تو قریشی ہیں، آپ کی خاندانی شرافت مرحبا، یہ تو غور فرمائیے کہ آپ کس عظیم ہستی کی اولاد ہیں۔ بیٹا، اللہ پاک سے ڈریے اور ہمیشہ کے لیے شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ وہ نوجوان اس پیار بھری نیکی کی دعوت سے پانی پانی ہو گیا اور اس نے رو رو کر توبہ کی، شراب اور دیگر گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما اور خوب حوصلہ افزائی فرمائی، وہ بے حد متاثر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے لگا اور احادیث مبارکہ لکھنے پر مامور ہوا۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں نے اسے قتل کر کے خودکشی کر لینی تھی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، گناہوں سے پیچھا چھڑانے، نماز کی پابندی کا ذہن بنانے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانے، دل میں عشق رسول کی شمع جلانے، جنت الفردوس میں جگہ پانے اور عذاب نار سے خود کو بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ سنت بھرے مدنی قافلوں میں سفر کا معمول بنائیے، और नेक आमाल के मुताबिक अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारिए। आपकी तरगीब व तहरीस के लिए एक मदनी बहार पेश की जाती है। एक मुबल्लिग दावत इस्लामी को मदनी काफिले में सफर के दौरान एक मस्जिद में नमाज जुमा से कब्र सुन्नतों भरा बयान करने की सआदत हासिल हुई। बयान के अख्तिताम पर मस्जिद में मौजूद इस्लामी भाइयों को उनकी पेश आमदा परेशानियों के लिए रूहानी इलाज हासिल करने की तरगीब दी। एक साहिब नमाज असर के वक्त उनके पास तशरीफ लाए और अपना मसला कुछ इन अल्फाज में बयान किया। उन्हें अरसे कबल में रोजगार के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर गए तो वहां जाकर चोरी डाकाजनी जैसे जराइम और दूसरे गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हो गए। जबकि पाकिस्तान में मेरी गैर मौजूदगी में घर पर यह कयामत टूटी कि किसी ने मेरे बच्चों की अम्मी पर गलत बेबुनियाद इल्जाम आयद कर दिए, जिसका नतीजा उसकी खुदकुशी की सूरत में जाहिर हुआ। जब उन्हें इस सानहे की खबर दी गई तो वो सदमे से पागल हो गए और फौरी तौर पर पाकिस्तान अपने गांव आ पहुंचे। नफ्सो शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने अपनी अहलिया पर गलत तोहमत लगाने वाले को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर लेने का इरादा कर लिया। उन्होंने इस वारदात के लवाजमात भी मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन इस मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के साथ साथ आपका बयान सुनने की भी सआदत नसीब हुई। बयान के इख्तिताम पर आपने मुश्किलात के हल के लिए शोबा रूहानी इलाज से राब्ता करने की जो तरगीब दी, इससे ढारस बंधी। बयान सुनकर उनके गुनाहों भरे इरादे मुतजलजल हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि आपसे अपना मसला बयान करके कोई ऐसी सूरत इख्तियार की जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसकी बातें सुनकर पहले तो वो घबराए, लेकिन फिर अल्लाह पाक व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करके मौके की मुनासिबत से मामले को हल करने के लिए दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना के सुन्नतों भरे तहरीरी बयानात के तीन रसाइल, गुस्से का इलाज, अफ़ो दरगुजर की फजीलत और खुदकुशी का इलाज से रहनुमाई लेते हुए तकरीबन एक घंटे तक उन पर इंफरादी कोशिश करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार वो इस्लामी भाई अपने खतरनाक इरादे से बाज आ गए और यूं दो कीमती जानें जाया होने से महफूज हो गई। उन्होंने अश्कबार आंखों से तौबा की और मां नाबालिग बच्चों के गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो गए। घर की हिफाजत और कारोबार में बरकत के लिए तावीजात अत्तारिया भी हासिल किए। जब मुबल्लिग दावत इस्लामी उन्हें मदनी काफिले में सफर की रगबत दिलाई तो पुरनम आंखों के साथ भर्राई हुई आवाज में कहा, इंशा अल्लाह अब तो मेरी तमाम जिंदगी दावत इस्लामी के दीनी कामों ही में गुजरेगी। ए इस्लामी भाई न करना लड़ाई कि हो जाएगा बदनुमा दीनी माहौल, संवर जाएगी आखिरत इंशाअल्लाह, तुम अपनाए रखो सदा दीनी माहौल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मुबल्लिगीन जुमा को बयान किया करें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस मदनी बहार से जुमा के सुन्नतों भरे बयान की बरकतें मालूम हुई। दावत इस्लामी के तमाम जिम्मेदारान को चाहिए कि जहां जहां मुमकिन हो जुमा में बदल बदल कर मुबल्लिगीन के सुन्नतों भरे बयानात की तरकीब फरमाया करें, क्योंकि नमाज जुमा में आने वाले कई अफराद ऐसे होते हैं जो उमूमन किसी भी इजतिमा में शिरकत नहीं करते। इस तरह ऐसों तक भी दावत इस्लामी का दीनी पैगाम पहुंच जाएगा और कई खुश नसीबों का दिल चोट खा जाएगा और इंशाअल्लाह वो गुनाहों से ताइब होकर पांच वक्त के नमाजी बन जाएंगे और इन पर आपकी मजीद इनफरादी कोशिश इंशाअल्लाह उन्हें मदनी काफिले का मुसाफिर बनाकर दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता करके सुन्नतों के सांचे में ढाल देगी। जैसा कि अभी आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि मुआशरे का बिगड़ा हुआ जिंदगी से बेजार शख्स मुबल्लिग दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे बयान और इनफरादी कोशिश की बरकत से कत्ले मुस्लिम से बाज रहकर और खुदकुशी का इरादा करके ताइब हो गया। हर दो मिनट में तीन खुदकुशियां। अफसोस, आजकल खुदकुशी कुछ ज्यादा ही आम हो गई है। इसका बहुत बड़ा सबब इल्मे दीन से दूरी है। दाढ़ी मुंडों या जज्बाती मॉडर्न बेरीश लड़कों, स्कूल और कॉलेज के तालिबे इल्मों, दुनियावी तालीम याफ्तों या बेपर्दा फैशन एबल औरतों में ही खुदकुशी का मैलान देखा जा रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि फुला दीनी तालिबे इल्म या आलिमे दीन या मुफ्ती साहिब या शरीयत की पाबंद पर्दा नशीन नेक बीबी ने खुदकुशी कर ली। दाऊद इस्लामी के मकतबतुल मदीना की 472 सफहात की किताब बयानत अत्तारिया हिस्सा दुवम सफहा 404 ता 406 पर है। गुनाहों की कसरत और अहवाल आखिरत के मामले में जहालत के सबब, अफसोस, हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में खुदकुशी का रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2004 ईस्वी में पाकिस्तान में खुदकुशी की 68 वारदातें हुई, जिनमें कराची का पहला नंबर रहा जबकि दूसरा नंबर मुल्तान वालों का आया। उसी अखबार के मुताबिक दुनिया में हर 40 सेकंड में खुदकुशी की एक वारदात होती है। क्या खुदकुशी से जान छूट जाती है? खुदकुशी करने वाले शायद ये समझते हैं कि हमारी जान छूट जाएगी, हालांकि इससे जान छूटने के बजाय नाराजी रब्बुल इज्जत की सूरत में निहायत बुरी तरह फंस जाती है। खुदा की कसम, खुदकुशी का अदाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। आग का अदाब हदीस पाक में है, जो शख्स जिस चीज के साथ खुदकुशी करेगा वो जहन्नम की आग में उसी चीज के साथ अदाब दिया जाएगा, उसी हथियार से अदाब। हजरत साबित बिन दहाक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इबरत बुनियाद है, जिसने लोहे के हथियार से खुदकुशी की तो उसे जहन्नम की आग में उसी हथियार से अदाब दिया जाएगा। गला घूंटने का अदाब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, जिसने अपना गला घूंटा तो वो जहन्नम की आग में अपना गला घूंटता रहेगा, और जिसने खुद को नेजा मारा वो जहन्नम की आग में खुद को नेजा मारता रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खाली थैला। मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तजा शेरे खुदा रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो दिल अच्छाई को अच्छाई ना समझे और बुराई को बुराई तस्लीम ना करे तो उसके ऊपर वाले हिस्से को ऐसे नीचे कर दिया जाएगा जैसे थैले को उल्टा किया जाता है और फिर थैले के अंदर की चीजें बिखर जाती हैं। दिल के अंधे और औंधे होने के माना। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वाकई इसमें बर्बादी ही बर्बादी है कि आदमी का दिल अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई मानने ही से इनकार कर दे। हमें गुनाहों से हमेशा बचना और अल्लाह पाक से कल्बे सलीम यानी सही और सलामत दिल तलब करना चाहिए, वरना अभी आपने दिल की तबाही के मुतालिक मौला अली रदी अल्लाहु अन्हु का इरशाद मुलायदा फरमाया। याद रखिए, गुनाहों की कसरत के सबब पहले दिल अंधा होता और फिर औंधा यानी उल्टा हो जाता है, जो कि आखिरत के लिए इंतहाई तबाह कुन है। चुनाचे दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना की किताब मलफूजात आला हजरत 561 सफात सफा 405 पर है। तीन चीजें अलहदा अलहदा हैं, नफ्स, रूह, कल्ब यानी दिल। रूह ब मंजिला बादशाह के है और नफ्स और कल्ब उसके दो वजीर हैं। नफ्स उसको हमेशा शर की तरफ ले जाता है और कल्ब जब तक साफ है खैर की तरफ बुलाता है, और माज़ल्ला कसरत मासी यानी गुनाहों की ज्यादती और खुसूसन कसरत बिदआत से अंधा कर दिया जाता है। अब इसमें हक के देखने, समझने, गौर करने की काबिलियत नहीं रहती, मगर अभी हक सुनने की इस्तेदाद यानी काबिलियत बाकी रहती है, और फिर माज़ल्ला औंधा कर दिया जाता है। अब वो ना हक सुन सकता है और ना देख सकता है, बल्कि चौपट यानी वीरान होकर रह जाता है। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कल्ब यानी दिल हकीकतन उस मुजगए गोश्त यानी गोश्त के लोथड़े का नाम नहीं, बल्कि वो एक लतीफा गैबिया है जिसका मरकज ये मुदगए गोश्त यानी दिल है। सीने के बाएं यानी उल्टी जानिब और नफ्स का मरकज जेरे नाफ यानी नाफ के नीचे है। इसी वास्ते शाफिया यानी शाफी हजरत सीने पर हाथ बांधते हैं कि नफ्स के जो वसाविस उठे वो कल्ब तक न पहुंचने पाए, और हनफिया यानी हनफी हजरत जेरे नाफ बांधते हैं। तौफीक नेकियों की ए रब्बे करीम दे, बदियों से बचने वाला तो कल्बे सलीम दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, मुआफी नहीं मिलेगी। हजरत अबू दर्दा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि तुम नेकी का हुक्म देते रहना और बुराई से रोकते रहना, वरना तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम्हारे छोटे पर रहम नहीं करेगा, और तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे मगर उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, वो मुआफी मांगेंगे मगर उनको मुआफी नहीं मिलेगी। बुरी बातों से रोको वरना। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम इस आयत को पढ़ते हो, पारा 7 सूरह माईदा आयत 105। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा हतदैतुम। तर्जमा कंज़ुल ईमान, ए ईमान वालों, तुम अपनी फिक्र रखो, तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा जो गुमराह हुआ जबकि तुम राह पर हो। यानी तुम इस आयत से ये समझते होगे कि जब हम खुद हिदायत पर हैं तो गुमराह की गुमराही हमारे लिए मुजिर यानी नुकसानदेह नहीं, हमको किसी गुमराह को गुमराही से मना करने की जरूरत नहीं। मैंने मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि लोग अगर बुरी बात देखें और उसको ना बदलें तो करीब है कि अल्लाह पाक उन सब को अपने अदाब में मुबतला फरमा दे। इस हदीस पाक के तहत मिरातुल मनाजी में है कुरान करीम की इस आयत, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अन्फुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضल्ला इज़ा हतदैतुम, पारा 7 सूरह माईदा आयत 105। तर्जमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालों, तुम अपनी फिक्र रखो, तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा जो गुमराह हुआ जबकि तुम राह पर हो। के हवाले से बाज लोग समझते हैं कि अमरु बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करने और बुराई से मना करने की जरूरत नहीं, बल्कि आदमी को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। दूसरों के गुनाह या कोताहियां इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु ने इस मुगालते को दूर करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद गिरामी के हवाले से बताया कि जब लोग बुराई को देखकर उसे बदलने की कोशिश न करें तो वो सब अदाब में मुबतला होते हैं। दूसरी रिवायत से ये बात वाजे होती है कि तब्दीली का ताल्लुक ताकत से है, यानी बुराई को बदलने वाले लोग इस बात की ताकत रखने के बावजूद ना बदलें तो वो भी अदाब के मुस्तहिक होंगे। मस्कूर आयत मुकद्दसा के तहत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, मुसलमान कुफार की महरूमी पर अफसोस करते थे और उन्हें रंज होता था कि कुफार इनाद यानी अदावत में मुबतला होकर दौलत इस्लाम से महरूम रहे। अल्लाह पाक ने उन मुसलमानों को तसल्ली फरमा दी कि इसमें तुम्हारा कुछ जरर यानी नुकसान नहीं। अमरु बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर, यानी भलाई का हुक्म देने और बुराई से मना करने का फर्ज अदा करके तुम बरी जिम्मा हो चुके, तुम अपनी नेकी की दावत की जजा पाओगे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आयत में अमरु बिल मारूफ व नहयुन अनिल मुनकर के वजूब की बहुत ताकीद की है, क्योंकि अपनी फिक्र रखने के माना यह है कि एक दूसरे की खबर गिरी करे, नेकियों की रगबत दिलाए, बदियों से रोके।